ये आकाशवाणी है, अब आप सरफिरोजी से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और अमेरिका की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के साथ रणनीतिक, आर्थिक और तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। राष्ट्रपति मैक्रों के आमंत्रण पर श्री मोदी बुधवार तक फ्रांस की यात्रा पर रहेंगे। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि उनकी यात्रा राष्ट्रपति मैक्रों के साथ रणनीतिक साझेदारी के लिए 2047 की जमीनी रूपरेखा पर प्रगति की समीक्षा करने का अवसर प्रदान करेगी। फ्रांस की यात्रा के बाद श्री मोदी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आमंत्रण पर अमरीका की दो दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। जनवरी महीने में राष्ट्रपति ट्रंप की ऐतिहासिक जीत के बाद ये प्रधानमंत्री की अमरीका की पहली यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में परीक्षा पे चर्चा के 8वें संस्करण में विद्यार्थियों से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने समग्र विकास पर बल देते हुए शिक्षा के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने परीक्षा के दौरान तनाव और चिंता पर काबू पाने के उपायों पर विद्यार्थियों से बात की। प्रधानमंत्री ने पोषण और आरोग्य के महत्व पर भी चर्चा की। उन्होंने विद्यार्थियों को स्वस्थ रहने के लिए मोटे अनाज और सब्जियां खाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि नींद पोषण पर निर्भर करती है। संसद के दोनों सदनों में आम बजट पर चर्चा फिर से शुरू हो गई है। भाजपा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने लोकसभा में बजट की सराहना करते हुए कहा कि राष्ट्रीय कल्याण के लिए इस बजट में प्रत्येक क्षेत्र के लिए पर्याप्त राशि आवंटित की गई है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था ऊंचाइयां छू रही है और 5वें स्थान पर पहुंच गई है। दूसरी ओर डीएमके के पार्टी दयानिधि मारन ने आरोप लगाया कि एनडीए सरकार ने इस बजट में सिर्फ कॉरपोरेट घरानों का पक्ष लिया है और बेरोजगारी तथा महंगाई सहित आम लोगों की वास्तविक समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया है। राज्यसभा में केंद्रीय बजट पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के पी चिदम्बरम ने कहा कि मौजूदा सरकार के दौरान जीडीपी में देश के निर्माण क्षेत्र की भागीदारी कम हुई है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025 का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में विनिर्माण क्षेत्र की भागीदारी 15.07% थी, जो वर्ष 2023 में गिरकर 12.93% रह गई है। उन्होंने अमेरिका से भारतीय नागरिकों को स्वदेश भेजने के मुद्दे पर भी सरकार की आलोचना की। कांग्रेस सदस्यों के आरोपों का जवाब देते हुए जेपी नड्डा ने विनिर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों में सरकार के उठाए गए कदमों की सूची पेश की। उन्होंने कहा कि अप्रवासियों को स्वदेश भेजने की मानक संचालन प्रक्रिया वर्ष 2012 से ही लागू है। चर्चा में भाग लेने वालों में समाजवादी पार्टी के रामजीलाल सुमन और एजीपी के वीरेंद्र प्रसाद वैश्य शामिल थे। दोनों सदनों में चर्चा जारी है। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा है कि सरकार देश में अधिक से अधिक हवाई अड्डे बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्यसभा में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के दौरान देश में हवाई अड्डों का अधिक निर्माण हुआ है। इस बीच विमान वस्तुओं में हितों का संरक्षण विधेयक 2025 आज राज्यसभा में पेश किया गया। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने इसे पेश किया। इसका उद्देश्य भारत के घरेलू कानूनों को केप टाउन कन्वेंशन और विमान प्रोटोकॉल के हिसाब से तैयार करना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के अधिकारियों के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए आज नई दिल्ली में भारत ईएफटीए डेस्क का शुभारंभ किया। श्री गोयल ने कहा कि ये मंच भारत और ईएफटीए के व्यवसायों के बीच एक सेतु का काम करेगा। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर ने बताया कि प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आज 20 से अधिक रेलगाड़ियां चलाई गई हैं। श्री शेखर ने बताया कि कल प्रयागराज से 300 से अधिक ट्रेनें चलाई गई। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने, राज्य में सुरक्षा स्थिति, बजट सत्र और शासन के मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद से श्री अब्दुल्ला की गृहमंत्री के साथ ये तीसरी मुलाकात है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।